आज हमारे बीच में आदरणीय रामलोचन भाई जी हैं। आपका जन्म उस महान पवित्र भूमि पे हुआ जहां पर श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, अयोध्या नगरी में। सन 1971 में आप बाबा के ज्ञान के संपर्क में आए। उसी वर्ष आपने अपना जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। आप वर्तमान समय वीआईपी डाइनिंग हॉल और किचन की सेवाएं संभालते हैं। हम सभी जब भी रामलोचन भाई जी से मिलते हैं तो इनकी खास विशेषता है, बहुत नम्रचित भाव से मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं, बहुत गंभीर भी रहते हैं। तो आज हम आदरणीय रामलोचन भाई जी से सुनेंगे कि बाप दादा को फॉलो करने की विधि क्या है। तो पहले तो हम भाई साहब का स्वागत करते हैं कि आप हम सबके बीच में आए। तो बाप दादा को कैसे फॉलो करें, भाई साहब से हम सुनेंगे।
हम सभी बाप दादा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे, शालिग्राम आत्माएं हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। हम आप सबका लक्ष्य है कि दोनों बाप को फॉलो करके दोनों बाप के समान बनना, शिव बाप को भी फॉलो करना और ब्रह्मा बाप को भी फॉलो करना। दोनों बाप को फॉलो करना जरूरी क्यों है, पहले ये समझ लेते। पहली बात है कि शिव बाप को क्यों फॉलो करें। शिव बाप को फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आत्माओं को शिव बाप के पास, शिव बाप के घर में, शिव बाप के समान कर्मातीत होकर चलना है। जैसे शिव बाबा सदा कर्मातीत है, जरा सा भी हिसाब किताब या कोई भी विकार रिंचक भी टच नहीं है, सदा प्योर और कर्मातीत है। हम आत्माएं सदा प्योर और कर्मातीत सदा के लिए तो नहीं बन सकती हैं। सदा के लिए तो शिव बाबा है, लेकिन हम आत्माएं इस कलप के हिसाब किताब को खत्म करके कर्मातीत बन सकती है, क्योंकि हम फिर अगले कलप में चक्कर में आएंगे, हिसाब किताब बनेगा। तो इस कलप का जो हिसाब किताब है वो हमें खत्म करना है, कर्मातीत बनना है। ऐसे अगर हम हिसाब किताब ना खत्म करें, कर्मातीत ना बने, तो भी शिव बाप के घर जाएंगे। वैसे तो शिव बाप के घर सारी दुनिया जाएगी, लेकिन स्वर्ग में सिर्फ ब्राह्मण आएंगे, स्वर्ग में सारी दुनिया नहीं आएगी, लेकिन परम धाम में सारी दुनिया की आत्माएं जाएंगी। लेकिन वो आत्माएं जो कर्मातीत होकर जाएंगी, और वो आत्माएं जिनका हिसाब किताब रहा हुआ है, धर्मराज की सजा खाकर जाएंगी, उन दोनों के जाने में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जैसे आप इस लौकिक दुनिया में वर्तमान समय देखा होगा कि जब कोई वीआईपी आता है तो उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड होते, गनमैन, और उस बंदूक के बीच में वो वीआईपी बड़े शान से चलता है, लोग उसे नमस्कार करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई चोर या बदमाश पकड़ा जाता है तो वो भी बंदूक के ही बीच में चलता है, उसके भी चारों तरफ बंदूक वाले। अब आप देखो, बंदूक के बीच में तो दोनों चल रहे हैं, वीआईपी भी चल रहा है और बदमाश भी चल रहा है, लेकिन दोनों के चलने में कितना अंतर है। वीआईपी शान से चल रहा है, लोग नमस्कार कर रहे हैं, जो बदमाश है वो सिर नीचे किए हुए चल रहा है, लोगों की नजरों में गिरा हुआ है, लोग गालियां दे रहे। तो जो आत्माएं कर्मातीत होकर चलेंगी, उन आत्माओं को सारी ब्राह्मण आत्माएं बहुत सम्मान की दृष्टि से देखेंगी, धर्मराज भी उन्हें सलाम करेगा। और जो आत्माएं कर्मातीत नहीं होंगी, वो ब्राह्मण आत्माओं के आगे उस समय बहुत शर्म महसूस करेंगी, और उस महसूसता में अंदर की बहुत ग्लानी आएगी, और वही अंदर की ग्लानी उस समय की अंत का समय होता है। ग्लानी का संकल्प करते करते शरीर छूटता है, यही है जमदूत की सजा। जमदूत पकड़ के रखते, बहुत दुख वाली मौत होती है, हाय हाय बहुत उस समय होता है, हाय मैंने गलती क्यों किया, हाय मैंने क्यों नहीं पुरुषार्थ कर लिया, हाय हमने बाबा का कहना क्यों नहीं माना। उस समय अंदर बहुत फीलिंग दुख की होती है। तो चलेंगे दोनों आत्माएं, लेकिन जो कर्मातीत बनकर चलेंगी वो बहुत सम्मान से चलेंगी। अब कर्मातीत बनने की विधि क्या है, अर्थास्यो बाप को फॉलो करने की विधि क्या है। शिव बाप तो सदा कर्मातीत है, हमें बनना है, तो कर्मातीत बनने के लिए पहले आपको विकर्मा जीत बनना पड़ेगा। जब आपसे विकर्म होना बंद हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा विकर्म होना बंद हो जाए, तब आपके जो पाप कर्म पहले से हैं वो योग के द्वारा भस्म कर दो। अगर अब भी बनते हैं, एक है विकर्म एक है पाप कर्म, तो पाप कर्म से तो ब्राह्मण लगभग मुक्त हैं। पाप कर्म अर्थात पांच विकारों के वशीभूत हुआ कर्म, मोटा रूप, और विकर्म अर्थात भगवान के आज्ञा की अवज्ञा, इस अवज्ञा का दंड चढ़ता है। ये थोड़ा थोड़ा दंड बहुत भारी हो जाता है, आत्मा को ऊपर उड़ने नहीं देता है, हल्का बनने नहीं देता है। कितना आत्मा सब कुछ भूल कर बाबा के पास बैठना चाहे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा घर परम धाम है, मैं वहीं की निवासी हूँ, भगवान के साथ साथ रहती हूँ, कितना भी संकल्प करे लेकिन साथ में बैठ नहीं पाएगी, नीचे ही रह जाएगी। भगवान के साथ बैठ करके उस साथ का, समानता का सुख ले हो नहीं पाएगा। अगर विकर्म होते रहते हैं तो इसलिए पहले कर्मातीत बनने के पहले विकर्मा जीत बनो। विकर्मा जीत बनने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी श्रीमत की अवज्ञा ना करो, और कर्मातीत बनने के लिए विकर्मा जीत, और विकर्मा जीत तब बनेंगे अर्थात मनसा वाचा कर्मणा आपसे विकर्म तब नहीं होगा जब आप विकल्प जीत बनेंगे। तो कर्मातीत बनने के लिए विकर्मा जीत, विकर्मा जीत बनने के लिए विकल्प जीत। जो व्यर्थ के संकल्प विकल्प पाते हैं वो जीत, और आपको व्यर्थ के संकल्प ना आए, निगेटिव संकल्प ना आए, विकल्प जीत बन जाओ, उसके लिए विदेही बनना पड़ेगा। विदेही, समझ में आई है बात? कर्मातीत के लिए विकर्मा जीत, विकर्मा जीत के लिए विकल्प जीत, विकल्प जीत के लिए विदेही, और विदेही आप तब बन सकेंगे जब भगवान के हर महावाक्य को वरदान के रूप में समझकर इतना महत्व देंगे हर महावाक्य को, महत्व दे करके उस पर पुरुषार्थ करेंगे, तब भगवान का वरदान आपको प्राप्त होगा। उस वरदान के आधार पर आप विदेही बन जाएंगे। तो आपको कर्मातीत बनना है, यह विधि अपनाओ तो विकर्मा जीत बन जाओ। लेकिन जो विकर्म हो चुके हैं उसको हमें भस्म करना है योग बल से। आप लोग जब क्लास पूरा हुआ अभी या किसी समय जब भी क्लास पूरा होता है या पहले, आप बाबा की याद में बैठते हैं। लेकिन जितनी देर आप बैठे थे, आपके विकर्म विनाश हुए हैं और कितने परसेंट हुए हैं ये आपको पता पड़ता है या नहीं? या ऐसा सोचते हैं योग करना हमारा काम है बाकी बाबा जाने, या ये सोचते हैं अनुभव होता है कि हमारा कितना विकर्म विनाश हुआ है? बाबा जाने राइट है, लेकिन आप भी जानो। क्यों? विकर्म आपने किया है, खत्म आपको करना है। तो कितने विकर्म हमारे खत्म हुए हैं ये कैसे पता पड़ेगा आपको? कि हम योग में बैठे थे, हमारे विकर्म विनाश हुए हैं, ये कैसे पता पड़ेगा? बताएंगे कोई? आएंगे कोई? अच्छा, आपकी आवाज तो हमारे पास तक शायद नहीं आएगी। अच्छा अच्छा ठीक, अब आप सुनो बाबा का उत्तर। अगर आपका विकर्म विनाश हुआ है तो उसकी निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे, जितनी देर भी योग किया है, तो योग करने के बाद एक ही संकल्प आएगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। ना इधर उधर देखने का मन कहेगा, ना और कोई संकल्प आएगा, ना बोलने का मन करेगा, ना शरीर के हलचल का संकल्प आएगा, बस एक ही संकल्प आएगा, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। तो जितना ये संकल्प आ रहा है और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें, तो जितना मन की खींच हो रही है, जितना ज्यादा, उतने आपके विकर्म विनाश हुए हैं। जैसे देखो, जितना लोहे से जंक उतरा हुआ होता है उतना चुंबक खींचता है। देखा है ना, सुना है, कई देखा होगा, कईयों ने सुना भी होगा कि जितना लोहे से जंक उतर जाता है चुंबक उसको खींचता है। अगर जंक लगा है तो चुंबक नहीं खींचेगा। ऐसे ही जितना आत्मा से जंक उतरती है उतना चुंबक बाबा खींचता है, उतना खिंचाव होती है। तो ये खिंचाव सिद्ध करता है कि आपके विकर्म विनाश हुए। अब विकर्म विनाश किस स्टेज में होंगे? योग तो आप करते हो, लेकिन किस स्टेज में आपके विकर्म विनाश होंगे? विकर्म विनाश होने की स्टेज है कि जब आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर बाबा के प्यार में लवलीन हो जाए, कुछ देर आत्मा परमात्मा के प्यार में समाई रहे, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा और कोई दूसरा संकल्प ना आए, जब कुछ देर ऐसे आत्मा बाबा के प्यार में समाई रहे कुछ देर तक, तब उसके विकर्म विनाश। अगर एक संकल्प भी आ जाता है तो विकर्म विनाश नहीं होगा। जैसे देखो, बाबा कई बार मुरली में एग्जाम्पल देता है कि जब सोनार जो होते हैं, देखा होगा जब सोना से निकालते अलाय तो सोने को आग के अंदर डालते,
प्रेम से बस लो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान।
ओम शांति। तो बता रहे थे कि जैसे सोने से अलाय निकालनी होती है तो सोने को आग के अंदर डालते, जब आग और सोना दोनों थोड़ी देर एक रहता है तब आग की गर्मी से सोना पिघलता है, अलाय जल जाती या निकल जाती है। अगर आप सोने को आग को ले जाकर दिखाकर टच करके वापस ले आओ, फिर आग को टच करो वापस ले आओ, ऐसे कितना समय आप करते रहो सोने की खाद नहीं निकलेगी। ऐसे आप पुरुषार्थ करके बाबा के पास पहुंचते हैं तब तक कुछ न कुछ संकल्प इस दुनिया का आ जाता है, फिर आप नीचे आ जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करके ऊपर जाते हैं। ऐसे कितना समय भी चढ़ते उतरते रहो, विकर्म विनाश नहीं होगा। विकर्म विनाश की स्टेज जिसको बाबा कहता है ज्वालामुखी योग, इतना पावरफुल याद हो, इसके लिए एक बार बाबा ने कहा था कि अगर आप 5 मिनट कंटिन्यू निराकारी आत्मक स्वरूप में टिक करके निराकार बाप को 5 मिनट कोई ब्राह्मण आत्मा निरंतर याद कर ले और कोई संकल्प ना आए तो उसके एक जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे। इतनी तेज आग है ये। कई बार आप पुरली में सुनते कोई बच्चा 24 घंटा बाप को याद कर ले तो कर्मातीत हो जाएगा, लेकिन निरंतर की बात है। बीच में जो संकल्प दूसरा आ जाता है वो तेज आग को जैसे बुझा देता है। अगर निरंतर रहे तो आपके विकर्म विनाश हो जाए। या कई बार दूसरा एग्जाम्पल बाबा देता है, लोहे पर जंग चढ़ी है, उसको जब आप घासलेट अर्थात मिट्टी के तेल में थोड़ी देर डुबोकर रखो तब उसका जंक निकलता है। आप तेल को टच करके ऐसे निकाल लो तो उसके जंक नहीं निकलेंगे। ऐसे ही आत्मा जब बाबा के प्यार में कुछ देर तक लगातार समाई रहे, बस आप और बाप, तीसरा कोई नहीं, जब इस विधि से समाए रहो फिर आपके विकर्म विनाश होंगे। इसके लिए बेहद की वैराग वृत्ति उपराम स्थिति चाहिए। बेहद की वैराग वृत्ति और उपराम स्थिति, बिना उपराम स्थिति के वहां टिक नहीं पाओगे और बिना वैराग वृत्ति के उपराम स्थिति आई नहीं सकती। इसलिए बेहद की वैराग वृत्ति और उपराम स्थिति, उपराम स्थिति का एग्जाम्पल क्या है? उपराम स्थिति किसे कहा जाता है? ऐसे तो आप लोग बाबा की मुरली में सुनते हैं कि जब हलवा बनता है, सब्जी बनती है, पूरा पक जाता है तो बर्तन का किनारा छोड़ देता है। किनारा छोड़ने को उपराम स्थिति कहा जाता है। वो चिपकता नहीं है बर्तनों में। जब तक चिपकता है, छुड़ाते रहो, तब तक उसको न्यारा होना कहा जाता है। न्यारे और उपराम में अंतर। न्यारा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे, उपराम छूट गए। उपराम का एग्जाम्पल है गुलाब का फूल और न्यारे का एग्जाम्पल है कमल का फूल। कमल के फूल को जानते हैं, लेकिन उपराम गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल की तीन विशेषता है जो और किसी फूल में नहीं है, जानते हैं? तीन विशेषता है, जिसलिए उसको उपराम का एग्जाम्पल दिया गया है। वो तीन विशेषता है। पहली बात है कि आप देख लेना या देखा होगा कि जब गुलाब का फूल पूरा खिल जाता है तो उसके पत्ते अपने आप झड़ जाते, या जरा सा ऐसे करो सब पत्ता नीचे गिर जाता है। किसी भी फूल का पत्ता गिरता नहीं है पूरा खिलने के बाद, सूख कर गिरता है, लेकिन गुलाब का पत्ता खिल गया और पंखड़ियां गिर जाती। दूसरी विशेषता है पंखड़ी गिरी, अर्थात उसको दे के संबंध सबसे मुक्त, कुछ नहीं उसकी इस दुनिया में, सिर्फ बीच में जो फूल बसता जिसको बूर कहते हैं वही बसता है। अर्थात दे के संबंध व्यक्ति वैभव वस्तु सब खत्म, आत्मक स्वरूप में स्थित, रूह स्वरूप में स्थित। तो जो रूह स्वरूप में सदा स्थित रहता है वो है उपराम स्थिति। तीसरी विशेषता गुलाब के फूल की है। वो विशेषता है कि गुलाब के फूल में कभी भंवरा नहीं बैठता है। भंवरा जानते हो? सुना है? नहीं सुना है? जानते हो? और सब फूलों पे भंवरा बैठता है, उसकी खुशबू लेने सब लेने, लेकिन गुलाब के फूल पर भंवरा नहीं बैठता है। विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। अर्थात जो उपराम स्थिति वाला होगा वो ना किसी पर आकर्षित होगा ना कोई उसके ऊपर आकर्षित। सेवा करते हुए, सब कुछ करते हुए उपराम, एक बाबा, बाबा की सेवा, बाबा की श्रीमत। बाबा को देखेगा, बाबा की सेवा करेगा, बाबा के श्रीमत पर चलेगा। ये है उपराम स्टेज स्थिति। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेती, ऐसी आत्मा शिव बाप को फॉलो कर लेगी और कर्मातीत बनकर पास विद आनर होकर चलेगी। दूसरा है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ब्रह्मा बाप को फॉलो क्यों करना है? क्योंकि हमें कर्मातीत होकर चलना है, लेकिन घर में बैठना नहीं है, घर से हमें नीचे उतरना है, स्वर्ग में आकर राज्य करना है। तो स्वर्ग में राज्य करने के लिए हमें ब्रह्मा बाप को पूरा फॉलो करेंगे अभी, तब सतयुग में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। अगर फॉलो कम तो साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन हम ब्राह्मणों का लक्ष्य है बाप समान बनना है, वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खेलेंगे, तो समान बनना है। लेकिन बच्चे ब्रह्मा बाप को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? फॉलो फादर कहते क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं? इसका मेन कारण है, इसमें नए बच्चे ज्यादा होंगे इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दिला रहे हैं कि ब्रह्मा बाप को क्यों नहीं फॉलो करते हैं। क्योंकि वो चाहे योग सीखते हैं तो बहने भी आजकल जितनी सिखाती है योग, डायरेक्ट निराकार को याद करना सिखाती, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, राइट है, लेकिन ब्रह्मा बाप से संबंध नहीं जुड़वाते। तो जो भी है सब शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, यथाशक्ति करना भी है लेकिन वाया ब्रह्मा। पिछली मुरली में था दोनों बाप दादा दोनों को याद करना, दोनों की स्मृति में रहना है, दोनों को फॉलो करना है। तो एक गलती जो थोड़ी ये होती है कि सिर्फ निराकार से योग लगाना सिखाते हैं, साकार से संबंध नहीं जुड़वाते। अब तो साकार नहीं अव्यक्त है। दूसरी बात, जो साकार मुरलियों में दो तीन शब्द ऐसे सुने हैं जिन शब्दों के कारण बच्चे ब्रह्मा को महत्व नहीं देते, वो शब्द है जैसे साकार मुरली में सुनते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहता है इसका फोटो नहीं रखो, ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, ये भी पढ़ रहा है, ये तुम्हारा अलौकिक बाप है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, परसा बाप से मिलता है। ऐसी बातें जो साकार मुरली में सुनी है उस कारण से ब्रह्मा बाप से संबंध नहीं जुड़ पाता है। क्योंकि दो बात है, एक रिगार्ड, एक है संबंध। रिगार्ड किसी का रखते हैं उसकी महानता के आधार से, फॉलो करते हैं प्राप्ति के आधार से। तो ना उनकी महानता को समझ पाए ब्रह्मा बाप के, इसलिए रिगार्ड नहीं रखा, इतना दिल का रिगार्ड नहीं आता। बस यही एक बात समझते हैं कि शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा का रथ है बस। लेकिन कितना महान है वो नहीं समझ पाए। तो ये शब्द शिव बाबा ने साकार मुरली में क्यों बोला था? जैसे अभी पिछले संडे की मुरली में परसों बाबा ने कहा था, बच्चे बोल को पकड़ लेते हैं लेकिन उस बोल का भाव क्या है वो नहीं कैच करते, शब्द को पकड़ लेते हैं। इस मुरली में ये बाबा ने कहा था, ये शब्द बोले थे, शब्द को पकड़ लेते हैं भाव को नहीं। तो बाबा ने ये शब्द क्यों बोला था? इसका फोटो नहीं रखो, इसको याद नहीं करो, इसका कारण था कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता थी। शिव बाबा की प्रथम रचना श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण में इतना आकर्षण है कि अगर अभी आ जाए तो सबकी इच्छा होगी उससे मिलें, उससे बातचीत करें। तो जब जिसकी प्रथम रचना, रचना में इतनी आकर्षण है तो जहां रचता स्वयं बैठा होगा तो कितनी आकर्षण होगी, आप समझ सकते। जहां शिव बाबा स्वयं बैठा हो तो कितनी आकर्षण होगी, कितना खींचता होगा। आप जितने पुराने हैं साकार बाबा के समय के, उनका अनुभव सुनो कि जब मधुबन में आए बाबा से मिलने या जहां भी मिले, पर जैसे बाबा थोड़ी देर दृष्टि दिया, दो एक शब्द बात किया, मीठे बच्चे आओ, बच्चे अपने बाप के घर में आए हो, आओ बच्चे, ऐसे दो चार शब्द कहा और वो सामने वाली आत्मा, चाहे बुढ़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, कोई भी है, कब वो बाप की गोद में चली गई उसको पता ही नहीं पड़ता था, खींच लेता था। चुंबक शिव बाबा बैठा था, आकर्षण थी, तो खींचता शिव बाबा था लेकिन शरीर ब्रह्मा का था। इसलिए किसी का बुद्धि योग ब्रह्मा के नाम रूप में ना अटक जाए, देह में ना अटक जाए, इसलिए शिव बाबा कहता था इसका फोटो नहीं रखो, इसको नहीं याद करो। लेकिन अब तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है, शिव बाप के समान है। पिछली मुरली तो आपने सुनी होगी, सारी मुरली यही रही है, बाप दादा दोनों को याद करो, बाप दादा दोनों को याद करो, दोनों को फॉलो करो, दोनों से प्यार करो, समान है। 3 साल पहले बाबा ने 18 जनवरी पर मुरली चलाई थी कि आस बाप दादा चारों तरफ सैर पर गया, सब तरफ चक्कर लगाया, सबके घर में भी चक्कर लगाया, सेंटर पर भी चक्कर लगाया, तो क्या देखा, चाहे प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं चाहे, तो बाबा ने कहा कि देखा चाहे प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं चाहे सेंटर पर हैं, देखा सब जगह ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा हुआ था सबके घर में। तो बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा किया, बड़ा बड़ा फोटो रखो। तो देखो साकार में बोला फोटो नहीं रखो, और अव्यक्त में कहता है बड़ा बड़ा फोटो रखो। तो अभी वर्तमान समय जो बाबा का इशारा है कि ब्रह्मा को इस आंख से तो नहीं देखा लेकिन मुरलियों के द्वारा सुने हो, उसको आप फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाप की दो बात फॉलो करनी है, एक ब्रह्मा बाप सर्व गुण संपन्न बना, दूसरा 16 कला संपूर्ण बना। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपन्न। तो 16 कला संपन्न बनने की विधि है, 16 कला माना 16 नहीं लेकिन 16 कला संपन्न अर्थात उसका हर संकल्प बोल कर्म चलना उठना बैठना सब कला के मुआफिक हो। कला अर्थात अलौकिक, आपका हर कर्म चरित्र अनुभव हो, उसकी विधि है, प्रयोग करके देखो। जिस ब्राह्मण आत्मा को यह कला आ जाए कि जब चाहे तब इस शरीर से स्वयं को अलग कर ले और जब चाहे तब इसका आधार लेकर पार्ट बजाए, जो इस कला में पास हो जाएगा वो 16 कला संपन्न बन जाएगा। जो इस शरीर से डिटैच नहीं हो पाता है, देह के भान में ही रह जाता है, उसका संकल्प बोल कर्म देखना वो कला के मुवाफिक नहीं होगा, अलौकिक नहीं होगा। जैसे सबका है वैसे ही होगा, लेकिन आपका अलौकिक दिखाई दे जब अलौकिक स्वरूप में स्थित रहोगे। अलौकिक स्वरूप में स्थित होकर आप जो बोलोगे वो बोल महावाक्य हो जाएंगे। देखो जब योग करते हैं तो क्या करते हैं, देखते तो तब भी है ना, लेकिन उस समय अलौकिक स्वरूप में स्थित हैं। हम आत्मा हैं, ये आत्मा है, देख रहे हैं लेकिन आत्मा को देख रहे, वही देखने की विधि अलौकिक हो गई, ये कला हो गया। अगर आप आत्मा समझ करके बात करोगे तो ये रहेगा ये भी भगवान का बच्चा है, उसके प्रति बहुत रिगार्ड प्यार उत्पन्न होगा, रूहानी प्यार। तो जो ये लड़ाई झगड़ा डिसरिगार्ड जो कुछ होता है ये सब तब होता है जब उसको आत्मा नहीं देखते हैं, देह के भान के रूप में देखते हैं, ये फलानी है या फलाना है, इसलिए रूहानी मधुरता नहीं जुड़ पाती। तो 16 कला संपन्न बनने की विधि है, आपको इस शरीर से अलग होने की कला, और सर्व गुण संपन्न बनने की विधि है, चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना। जो आत्मा चारों सब्जेक्ट में, क्योंकि गुणों का सबसे कनेक्शन है और सर्व गुण संपन्न बनना, इसके लिए जितनी बाबा ने नॉलेज दी है, नॉलेज गुणों के लिए है, शक्तियों के लिए है, सेवा के लिए जो भी दी है, उसमें फुल पास होना, और उसमें फुल पास होने की विधि है कि जैसे बाबा मुरली में जो कहता है, उस दिन एक पॉइंट ले लो कि आज मुझे ये करना ही है। अगर एक पॉइंट रोज ले लो, मुझे ये करना ही है, और 10-12 घंटा उस पर अटेंशन दो सारा दिन जो भी है, तो जिस बात पर 8-10 घंटा अटेंशन जाएगा, वो पॉइंट आपकी बन जाएगी, आपके स्वरूप में आ जाएगी। तो एक दिन में एक पॉइंट धारण करो तो 30 दिन में 30 पॉइंट धारण हो जाएगी, बहुत जल्दी संपन्न बन जाओगे। बाबा ने यही विधि अपनाई। तो संपन्न बनने की विधि, ज्ञान की पॉइंट एक ले लो कि मुझे आज ये धारण करना है। तो ब्रह्मा बाप समान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और शिव बाप समान कर्मातीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।